તારીખ 22/9/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 43 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ ખૂબ જ છે.
मुमुक्षु जीव को जीवन में किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए उस विषय में मार्गदर्शन है. कि यदि सत्पुरुष का समागम उपलब्ध नहीं है उसको समागम की भावना रखनी चाहिए और परस्पर मुमुक्षु भाइयों का समागम जारी रखना चाहिए. इसके सिवा जो भी सांसारिक प्रवृत्ति है जिसको भी अपने पूर्व कर्म अनुसार होती है जैसी भी होती है उसको उस प्रवृत्ति में विरक्तपणा रखना. क्या कहते हैं विरक्तपणा रखना, मतलब क्या? रक्त मैंने राग रस से, जो राग रस से प्रवृत्ति करते हैं उसको रक्तपणा कहते हैं, और जिसमें राग रस इतना नहीं हो. किस कारण से नहीं हो? कि जो भी संयोग की प्राप्ति अप्राप्ति होगी वो तो पूर्व कर्म अनुसार होगी. चाहे हम तीव्र रस से प्रवृत्ति करें या विरक्तपणे से प्रवृत्ति करें, जो भी परिस्थिति है वो तो पूर्व कर्म के अनुसार उसमें जो कुछ होने वाला है वो तो होगा. लेकिन हमारा राग रस है वो हमारा आत्मा को नुकसान करता है, अशांति लाता है, और शांति प्राप्त करने में वो विघ्न होता है, बाधक होता है. इसलिए विरक्त भाव से प्रवृत्ति करना, विरक्तपणे से प्रवृत्ति करना, निरसपणे से प्रवृत्ति करना. रस कम होना चाहिए. प्रवृत्ति करनी पड़ती है इसलिए करते हैं, करने के रस से नहीं करते हैं, लेकिन करनी पड़ती है इसलिए करते हैं, तो उसमें रस कम हो जाएगा. करनी पड़े एक बात है, पर हमें करनी है, हमारे रस से करनी है, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है. इसलिए जिस मुमुक्षु को अपना आत्महित करना है, आत्मकल्याण करना है, उसको अपने उदय के कार्यों में विरक्त रहना चाहिए, निरस रहना चाहिए. तो विभाव की जो परिणाम ऊपर असर है वो तो उतनी नहीं होगी कि जिससे हमें आत्मकल्याण का रास्ते में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो. एक साइड हमें मंजूर है कि हमें आत्मकल्याण करना है, लेकिन उसी आत्मकल्याण के मार्ग में हमें कौन सी दिक्कत है, दिक्कत होती है, किससे होती है, काय से होती है, क्यों होती है, ये विषय हमारे लक्ष्य में नहीं हुए, ध्यान में नहीं हुए, समझ में नहीं हुए, तो वहां तो हम नुकसान करेंगे, और फिर हम आशा ये रखेंगे, अभिलाषा ये रखेंगे कि हमारा आत्म कल्याण तो हमें करना है, कैसे होगा? इसलिए दोनों साइड संभालनी पड़ती है, नुकसान नहीं करना है और लाभ करना है, लाभ भी करना है और नुकसान भी करना है, दो बात साथ में कैसे चलेगी? उसमें अकेला नुकसान होगा, लाभ होने वाला नहीं है। खास करके तत्वज्ञान की जो प्रवृत्ति करते हैं उनको इस प्रकार की गलत समझ रहती है कि हम तो आत्मा के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान की प्रवृत्ति कर रहे हैं, ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हमें तो आत्म लाभ होना चाहिए। दूसरी ओर क्या होता है जिस पर ध्यान नहीं है कि औदयिक कार्यों की जो प्रवृत्ति है उस कार्य में हम पूरे रस से शामिल हो जाते हैं, फिर हम हमारे लिए एक समस्या खड़ी होती है कि हम इतना इतने साल से ऐसे महान आचार्यों के और महान पुरुषों के ज्ञान जो उसने निरूपित किया है उसका हम स्वाध्याय करते हैं, रस लेते हैं, उसमें समय देते हैं, उसमें समर्पण करते हैं। समय और शक्ति का तो समर्पण है ही, फिर हमें लाभ क्यों नहीं होता है? लेकिन नुकसान का जो धंधा है उस पर हमको पता नहीं रहता है कि हम कितना नुकसान कर लेते हैं। तो इस विषय पर ये छठे पत्र में श्रीमद् जी ने प्रकाश डाला है कि प्रवृत्ति में विरक्तपना रखना और सत्पुरुष के चरित्र और मार्गानुसारी जीवों के वचनों और जिसका उद्देश्य आत्मा को मुख्य रूप से कहने के विषय में है, ऐसे ग्रंथ इसे ग्रंथ के परिचय रखना। और इसके उपरांत भी सभी बाह्य प्रवृत्ति में, सभी साधन में मुख्य साधन ऐसा श्री सत्पुरुष का प्रत्यक्ष समागम को गिनना, ये अभिप्राय तो रखना है कि सत्पुरुष का प्रत्यक्ष समागम के बराबर में तो कोई साधन नहीं होता। जैसे कोई गंभीर रोग होता है या रोग की परिस्थिति कोई ऐसे स्टेज में आ जाती है कि जिसमें गंभीरता बढ़ जाती है, तो डॉक्टर ये सूचना करता है कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दो। घर पे कितना भी साधन संपन्न होते हुए भी क्या कहते हैं कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन उसको रखना है। जब भी इलाज हो सकता है तो सदगुरु वैद्य सुदान, अगर मुमुक्षु को हित करना है और जीवन मरण की गंभीर रोग की समस्या को हल करना है तो ये बात में तो ध्यान में रहनी चाहिए कि हमें प्रत्यक्ष सत्पुरुष का समागम मिलता है तो इसके बराबरी में तो कोई साधन नहीं है। और वो भी जब कि जिसको पूरी आज्ञाकारिता होवे, कितने तैयारी उतनी होवे, पूरा अज्ञांकित होवे, उसके एक विकल्प के विरुद्ध हमें नहीं जाना है, चाहे तत्वज्ञान संबंधित हो चाहे कुछ भी हो। ऐसी आज्ञाकारिता होती है तो इसका मार्गदर्शन है, छोटी मोटी सब बात में पूरे ध्यान से अंगीकार करने के लिए तैयारी होती है जीव की, मुमुक्षु जीव की। वरना क्या करेगा कि कुछ बात को उपेक्षित कर लेंगे तो वहां विनय की क्षति होती है, और विनय की जब क्षति होती है तो उपदेश परिणमन होने में ये एक प्रतिबंधक कारण है। इस विषय में एक बहुत अच्छा पत्र है, इसमें पत्रांक 526 सत्संग सदगुरु सत्शास्त्र आदि जो भी का साधन कहे हैं, आखिर का पैराग्राफ पत्र का आखिर का पैराग्राफ, वे साधन की आराधना जीव को निज स्वरूप प्राप्त करने के हेतु से कही है, तथापि जीव वहां भी वंचना बुद्धि से प्रवर्ते तो कभी कल्याण नहीं होता। क्या क्या शब्द रखा? वंचना बुद्धि, ऐसा एक शब्द रखा। अभी स्वयं ही वंचना बुद्धि क्या चीज है उसका स्पष्टीकरण खुद देंगे। वंचना बुद्धि मैंने क्या, वंचना बुद्धि अर्थात सत्संग और सदगुरु आदि के प्रति खरा आत्मभाव से, सच्चा आत्मभाव से महात्म बुद्धि आवश्यक है, ऐसी महात्म बुद्धि नहीं। आज्ञाकारिता क्यों नहीं है कि जितनी महात्म बुद्धि होनी चाहिए उतनी महात्म बुद्धि नहीं आई है, इसलिए कुछ बातों की उपेक्षा हो जाया करती है सहज रूप से। और अपने आत्मा को अज्ञानपना ही अभी तक वर्त रहा है, इसके लिए अपनी अल्पज्ञता और लघुता, कि मेरे में कुछ नहीं है, क्या लगना चाहिए कि मेरे में कुछ नहीं है, मैंने कुछ अपना नहीं किया, अभी तक इतना जीवन चला गया, इतना सत्संग मिला, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैं तो वहां का वहां हूं। अपनी अल्पज्ञता और लघुता, छोटापन विचार करके अपनी महात्म बुद्धि नहीं हुई, मैंने अपनी विनम्रता नहीं आई, लघुता नहीं आई, उस प्रकार से सत्संग और सद्गुरु आदि को समागम में नहीं लेना, इसका मतलब आराधन नहीं करना, ये भी वंचना बुद्धि है। क्या ये वंचना बुद्धि है? वंचना मैंने क्या कि खुद ही अपने आप से ठगा जाता है। कैसे ठगा जाता है कि हम तो सच्चे देव गुरु को शास्त्र को मानते हैं, उनकी भक्ति पूजा करते हैं, श्री गुरु को भी मानते हैं, इनके प्रति भी हमारा बहुमान और भक्ति है, लेकिन किस अनुपात में है वो सवाल है इधर। क्या जिसको बहुमान भक्ति नहीं है उसकी तो चर्चा नहीं की, क्योंकि वो तो चर्चा करने लायक है भी नहीं, लेकिन जिसको है उसको जिस मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में नहीं है, इसकी चर्चा है। तो है उसको तो नहीं ऐसा नहीं लगेगा, क्या हमको तो है। अभी तुमको है तो किस मात्रा में है, ये पहला सवाल है। जिस मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में अगर नहीं है तो मुझे है ऐसा लगना, ये अपने आप को ठगने की बात हो गई, ऐसा कहते हैं। कैसे कैसी भूल हो जाती है, इसको वंचना बुद्धि ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया। वहां भी जो जीव लघुता को धारण न करे, सतपुरुष के प्रत्यक्ष समागम में भी जीव को लघुता अगर नहीं आई, परम विनय नहीं आया, तो प्रत्यक्ष रूप से यह जीव भव परिभ्रमण से भयान्वित नहीं हुआ है, उसको भव का परिभ्रमण का भय नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसा ही विचारना योग्य है। देखो कितनी बात ले लिए कि उसको भव का अभाव करने के सही भावना हुई नहीं है। ज्यादा लक्ष्य तो प्रथम सबसे प्रथम सबसे पहले ज्यादा लक्ष्य तो इस बात पर होगा तो सर्वशास्त्रार्थ और आत्मार्थ सहज रूप से सिद्ध मैंने प्राप्त होने होने का संभावना है। शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन उसका प्रयोजन सिद्ध क्यों नहीं हुआ, कि वो लक्ष्य ही नहीं है उस पर, तो जिस पर लक्ष्य होना चाहिए, पहले सबसे पहले होना चाहिए, उस पर लक्ष्य नहीं गया, इसलिए आत्मार्थ और शास्त्रार्थ की प्राप्ति की संभावना नहीं रही। ये बात उन्होंने 526 में लिखी है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष समागम को गौण करके परोक्ष जो भी साधन है उसकी मुख्यता में जीव रह जाता है। शास्त्र तो पढ़ते हैं, सत्समागम तो आपस में मुमुक्षु बैठकर करते हैं, और दूसरे भी जो भी साधन क्रिया है वो कर लेते हैं, जो भी हमारे यहाँ होती हो तो उसमें संतुष्ट हो जाता है। तो उसको मुख्य साधन पर ध्यान नहीं गया, और मुख्य साधन पर ध्यान इसलिए नहीं गया कि इसकी महत्ता क्या है जीवन में, इसका पता नहीं लगा। मुमुक्षु के जीवन में सतपुरुष की सतपुरुष का महत्व कितना है, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। इसका महत्व जहां तक नहीं आएगा तो उसकी उपलब्धि में सत्समागम में जाने का नहीं बनेगा, क्योंकि उदय के कार्य तो हरेक को होते हैं, अपने अपने कारोबार व्यवसाय तो होते ही है, तो छोटी मोटी बातों में उपेक्षा हो जाया करेगी। अगर नहीं है तो भावना नहीं रहेगी, अगर इसका महत्व है तो सत्पुरुष की अनुपस्थिति है उसमें जो प्रत्यक्ष समागम की भावना तीव्र होनी चाहिए वो नहीं होगी, ये नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसका महत्व अच्छी तरह समझना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। पहचाने तो महत्ता तो आएगी ही, लेकिन बिना पहचाने भी इसका न्याय को और इसके महत्व को समझे ही नहीं, ऐसा कैसा बने? जो अपने को हित करने को आया है तो अपने हित की बात तो अच्छी तरह समझे। जैसे हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में जिससे हमारा काम पड़ता है, इससे हम पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं, तेजी से कोई हमारी बात पहुंचानी हो तो टेलीग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्र दो तीन चार दिन में मिले, टेलीग्राम कुछ घंटे में मिल जाए। इससे ज्यादा हमें जरूरत लगती है तो हम टेलीफोन कर लेते हैं, है कि नहीं? ये महत्व पर आधारित है ना, कम्युनिकेशन के जितने भी साधन है उसमें जो भी साधन का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी जरूरत पर आधारित होता है। इससे भी हमें ज्यादा जरूरत लगी तो हम टेलीप्रिंटर से बात करेंगे, फैक्स कहते हैं आजकल, फैक्स से बात करेंगे। तो इतना साधन होते हुए भी हम पर्सनल मीटिंग करते क्या नहीं करते, प्रत्यक्ष क्यों जाते हैं? इतना साधन अधूरा पड़ता है तब तो जाना पड़ता है ना। अगर कम्युनिकेशन के इतने अच्छे साधन है तो फिर व्यापारिक और व्यावसायिक या कोई भी बात हो तो ये तो कम्युनिकेशन से ही पता देवे, तो फिर तो ट्रेन और प्लेन सब खाली हो जाए, ट्रैफिक ही नहीं मिले इसमें। लेकिन इसमें इतना ट्रैफिक है, इतने साधन पहले नहीं थे, उतने साधन अभी उपलब्ध है, फिर भी ट्रेन और प्लेन का ट्रैफिक कम नहीं हुआ है, बड़ा है। मतलब क्या है इसका? पर्सनल अप्रोच जो प्रत्यक्ष है उसके उसमें जो काम होता है वो परोक्ष साधन से नहीं होता। हमारी बात अगले को समझानी है या सामने वाले की बात हमें अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है तो आपस में मिलना जरूरी है, ये लगता है तब जाता है आदमी, क्योंकि इसमें तो खर्चा आना जाना सब रिस्क सब बढ़ता है कि नहीं? तो अब बात रही सबसे बड़ी समस्या की, कि जिसमें हमेश के लिए पूरी सुख शांति, सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सहित जो ऐसी जो प्राप्ति है इसकी सही कीमत आवे, तो प्रत्यक्ष समागम को गौण करना कोई नहीं चाहेगा। और प्रत्यक्ष समागम नहीं मिलेगा तो उसकी भावना तीव्र तीव्रतर तीव्रतम होती ही जाएगी, क्योंकि जरूरत है हमें, इसलिए ये बात जरूरत पर आधारित है। और रुचि का नाम जरूरत लगे उस पर रुचि का नाप होता है, बिना जरूरत रुचि कभी होती नहीं है। देखिए वो तो एक जीवंत परिस्थिति जो चल रही है उस पर वो अपना विचार प्रदर्शित कर रहे हैं श्रीमद जी। तो क्या कहते हैं आगे, कि हमारा समागम का वह अंतराय जान करके, ऐसी परिस्थिति है कि हमारा व्यक्तिगत समागम पर प्रत्यक्ष समागम उपलब्ध नहीं है, ऐसा जान करके चित्त को प्रमाद का अवकाश देने योग्य नहीं, हमारा प्रत्यक्ष समागम नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई परिस्थिति आपस में खड़ी है तो आपको प्रमाद में नहीं रहना है। प्रमाद मैंने क्या इधर कि अपने औदयिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएं कि हमारा आत्महित का हम विस्मरण कर दे रहे हैं, हमारे काम में उतने लगे रहे कि आत्महित को विस्मरण कर दें, या हमारी सावधानी उदय के कार्यों में इतनी हो जाए कि आत्महित की हमारी सावधानी नहीं रहे, उसी को यहाँ प्रमाद कहने में आता है। जब पर्युषण के बाद ऐसे होता है तो ऐसा समझना चाहिए कि पर्युषण में ऐसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। दूसरे लोग भी अपने अपने पर्युषण में जाते कि नहीं, और हम हमारे पर्युषण में जाते, क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। ये धर्म पर्युषण में करने लायक है और बिना पर्युषण नहीं करने लायक है, ऐसा है क्या? धर्म क्या है? धर्म तो सुख शांति है, आत्मा की सुख शांति को धर्म कहते हैं। तो भी काफी चर्चा चली। अब पर्युषण में सुख शांति चाहिए, बिना पर्युषण भले ही हमें दुख हो, भले ही आकुलता बनी रहे हमारी, भले ही चिंता में हम व्यस्त रहें, ये बात समझदारी की नहीं है। ये तो कहते हैं कि अगर हमारा प्रत्यक्ष समागम में अंतराय है ऐसा पता चलता है आपको, तो आपका चित्त में, तो परिणमन में बोलते हैं, आपके परिणमन में, आपके चित्त में प्रमाद का अवकाश देने योग्य नहीं है। प्रमाद में मत रहिए, अपने स्वरूप में प्राप्ति की सावधानी के विषय में बराबर जागृत रहिए। और इसके लिए क्या करना कि परस्पर मुमुक्षों भाइयों का समागम करते रहना व्यवस्थित रूप से, उसको अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है, नियमित करना चाहिए। जो प्रत्यक्ष आपस में जो मुमुक्षुओं का सत्संग है उसको नियमित रहना चाहिए। नियमित मैंने क्या है कि हम हफ्ते भर में दो दिन तो आवे, पांच दिन नहीं आवे, या तीन दिन आवे, चार दिन नहीं आवे, चार दिन आवे और तीन दिन नहीं आवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसकी वकालत करते हो? व्यवसाय में अकेले है तो क्या खाने को घर पे नहीं जाते? क्या जाते कि नहीं जाते? अच्छा, कोई सगे संबंधी में व्यवहारिक कार्य होते तो जाते कि नहीं जाते? क्यों, अकेले है तो फिर भी जाते? क्यों जाते हैं? तो वहां उतना एडजस्टमेंट करते हो, इधर क्यों नहीं करते? वहां तो करते हैं, इधर क्यों नहीं करते हैं? हमारे कोई सगे बीमार होते हैं, पता चलता है कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, खबर पूछने को जाते कि नहीं जाते हैं? अकेले हो तो भी जाते हो, ये बात कैसी? और कोई सभी अनेक प्रकार के प्रसंग तो पड़ते हैं संसार में, तो हर जगह एडजस्टमेंट करते करते कि नहीं करते? इधर नहीं करते इसका मतलब कि ये लास्ट प्रायोरिटी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लास्ट प्रायोरिटी में रखा है, फिर हम अपेक्षा रखें कि आत्मा का कल्याण होवे तो अच्छा, कैसे होगा? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। हम कोई मामूली काम करने के लिए नहीं निकले हैं। क्या है ये काम? है सिद्ध पद हासिल करने का है। क्या सर्वोत्कृष्ट पद है वो जगत का, जिसको हम कहते हैं कि तीन लोक का नाथ है। भगवान कैसे हैं कि तीन लोक के नाथ है, वही पद हमें ग्रहण करना है। छोटा मोटा काम नहीं शुरू किया है हमने, बहुत बड़ा सबसे बड़ा काम शुरू किया है। तो इतना महान कार्य के लिए हमारी कोई तैयारियां में तैयारी तो उसके अनुपात में होनी चाहिए कि नहीं? ये कोई बच्चों को कहता है कि तुमको अच्छी तरह लगन से पढ़ना चाहिए और काम धंधे करने वाले को भी कहते हैं कि तुमको अपना काम में पूरा ध्यान देना पड़ेगा। बाहर के काम भी ऐसे ही होते हैं। ये सबसे बड़ा काम में उसके अनुपात में तो कोई गंभीरता आनी चाहिए। ऐसा भीतर में लगना चाहिए कि मैं कोई मामूली काम हाथ में नहीं लिया। क्या यह काम मैंने कोई मामूली काम हाथ में नहीं लिया? एक मरण का प्रसंग आता है, मरण नहीं होता है लेकिन दिखता है कि शायद हो जाए कुछ, तो भी कितने सीरियस हो जाते हैं। घर में कोई कोमा में आ जाता है तो फिर हंसी मजाक चलती है क्या? बहुत गंभीर परिस्थिति है, कभी क्या हो जाए कह नहीं सकते, सब सीरियस हो जाते हैं। तो अनंत जन्म मरण की ये समस्या है, एक मरण की नहीं है, अनंत जन्म मरण की ये समस्या है। उतनी गंभीरात उसमें आए बिना जिस अनुपात में हमारा प्रयास होना चाहिए उस अनुपात में वो प्रयास नहीं होगा। ऊपर ऊपर से चलेंगे। दोपहर को कहा था कि ये बात जहां लोगों को तो सुनने को नहीं मिलती, लाखों करोड़ों मनुष्यों को तो सुनने को नहीं मिलती, जिसको सुनने को मिलती है उसमें 90% ऊपर से चलते हैं। क्या हालत है हमारी समाज की कि 90-100 में से 90 लोग तो बहुत ऊपर ऊपर से चलते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, मामूली बात है। मंदिर आते हैं, स्वाध्याय नहीं करते तो चलो मंदिर आज दर्शन तो कर ले भगवान का, पहले साधन नहीं था, अभी इतनी लागत से ना 15-17 लाख लग गया ना, इतनी लागत से कोई साधन हुआ है तो अपन दर्शन तो करने को कम जावे, कम से कम जावे। तो जैसे सब्जी मार्केट में घूम के चले आते हैं वैसे ऐसा करना क्या क्या चला, हाँ कर लिया दर्शन 2-5 मिनट में। मामूली काम समझ लेते हैं तो उसकी गहराई में जाने का कोई अवसर नहीं होता। इसलिए अनंत काल में हमने ऐसा ही किया है। भगवान भी मिले हैं, सर्वज्ञ भी मिले हैं, शास्त्रास्त्र भी मिले हैं, सत्पुरुष मिले हैं, लेकिन हमने ध्यान दिया नहीं, उसी को प्रमाद कहते हैं। ऐसा प्रमाद करना नहीं चाहिए। परस्पर अपने सत्समागम को अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है। निवृत्ति के क्षेत्र का प्रसंग न्यून थना होने देना योग्य नहीं, मतलब क्या कह रहे कि वो मुमुक्षु भी कुछ समय के लिए अपना घर दुकान छोड़ करके कुछ समय तक वो निवृत्ति क्षेत्र में चले जाते हैं। निवृत्ति क्षेत्र में कि जहाँ संसार की कोई प्रवृत्ति न हो, कोई तीर्थ क्षेत्र में चले जावे या कोई आश्रम में चले जावे कि जहाँ कोई तार टेलीफोन किसी से भी कोई उपाधि वाली बात साथ में नहीं रहे, सिर्फ एक ही काम पर हम ध्यान दे सके। ऐसे वो लोग जाते थे, ये जिसको पत्र लिखे वो मोक्षो, सालाना दो दफे, तीन दफे, चार दफे चले जाए एक साल में, हफ्ता भर, दस दिन, पंद्रह दिन के लिए छोड़ देवे अपना काम काज सब, कुटुंब परिवार सब, और एक ही काम में ध्यान देवे कि हमारा हित कैसे हो सकता है, हमारा कल्याण कैसे हो। उसमें ऐसे प्रोग्राम में ऐसे प्रसंगों की न्यूनता नहीं करना। मैंने पर साल तो हम तीन दफे गए थे, इस साल एक ही वक्त गए, ऐसा नहीं, उसमें न्यूनता मत करना, ऐसा कहते हैं। और कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं। कामना मैंने क्या, भविष्य में ऐसा करना है, भविष्य में इतना मिलना चाहिए, भविष्य में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सांसारिक पदार्थों की जो कामना अभिलाषा है, उस पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करना। अभी वर्तमान में आज करनी पड़ती है इसलिए करते हैं, कल के लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, कल की चिंता नहीं करना। जो कल की चिंता करेगा उसको शांति की प्राप्ति होने का कोई अवसर आता नहीं, क्योंकि आज तो कितना भी अच्छा है हमारा परिस्थिति, आज तो पूरी अनुकूलता है, लेकिन क्या करें, हमें कल की फिक्र है, तो उसमें सारा जीवन निकल जाएगा। और क्या है कि कामना पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है उसको ये जो अध्यात्म रस पैदा करना है अपने आप में, आत्मा में, वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें इतना रस लंबा जाता है, इतना रस बढ़ जाता है कि ये विरुद्ध रस उत्पन्न नहीं होता, यही परिस्थिति होती है। इसलिए कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं, ऐसा है स्वामित्व छोड़ देना। क्या हम तो नौकर है, किसका, उदय का, उदय वाला एक सेठ है, हमारे पास काम करवाता है, हमारी ड्यूटी खत्म हुई हम हमारे काम में लग जाएंगे। नौकर लोग क्या करते हैं, शाम को टाइम हुआ चलो, काम हुआ नहीं हुआ, अधूरा हुआ, जो भी हुआ कल करेंगे, आज का हमारा समय पूरा हुआ, सेठ जाने और सेठ का काम जाने, अपने चलो घर पे है। हाँ, नौकर बन जाना चाहिए, धनी नहीं रहना। धनी है वो पूरी फिक्र करेगा, नौकर इतनी फिक्र नहीं करेगा, उसको अपनत्व नहीं है। तो भले ही धंधा अपना होवे तो भी धनी नहीं रहना है, नौकर बन जाना बस। तो भी हमको कुदरत ने मैनेजमेंट के लिए यहाँ स्थापित कर दिया है, मैनेज करते जो भी हमारे में जितनी अक्कल है, बुद्धि है, व्यवस्था शक्ति है, उतना काम कर लेते हैं, हमको अपॉइंट कर दिया है इधर उदय ने, इससे ज्यादा कोई हमें लेना देना नहीं है। बाकी तो जो होता है, जो होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। ऐसा विचार करके जितना हो सके उतना अप्रमत्तता से, मैंने प्रमाद नहीं होना, और जागृति रखना, अपने हित के विषय में सावधानी होनी, जागृति रखना, और परस्पर का समागम और निवृत्ति क्षेत्र को आराधना, और प्रवृत्ति में उदासीनपणा को आराधना। समागम, परस्पर समागम और निवृत्ति को अपेक्षा से आराधन करना, और प्रवृत्ति को उदासीनता से आराधन करना, ये एक बहुत कठिन लगे ऐसी शर्त है। प्रवृत्ति करना और उदासीन रहना, देखिए अपेक्षा वृत्ति है वो रस को उत्पन्न कर देती है, उपेक्षा वृत्ति है उसमें रस नहीं आता। करना पड़ता है, क्या करें, जबरन करना पड़ता है उसमें रस नहीं आएगा। हाँ, समझदारी से हो सकता है। जीव नुकसान से हमेशा डरता है, क्या नुकसान का भी समझ आई ने तो डरने लगेगा, इसमें हमारा नुकसान है, रस लेने से हमारा नुकसान है, ऐसा लगे तो निरस परिणाम हो जाएगा। जैसे किसी कैदी को सजा होती है और जेलर है वो उसको पास काम करवाता है कि नहीं करवाता, कुछ पैसा भी मिलता है उसको, मुफ्त में नहीं करवाते, उसको भी कुछ पैसे कम देते हैं लेकिन पैसे तो देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, बाकायदा उसको कुछ न कुछ मिलता है। कितना रस आता है उसको, कितना रस आता है उसको, कोई रस नहीं आता उसको। यही लगता है कि मैं कब छूटूं यहां से, ये जेल से मैं कब मुक्त हो जाऊं, मेरी सजा कब पूरी होती है। ऐसे हम लोग सजा में आए हैं, पूर्व में अपराध किया है, इस अपराध को इधर भुगतने के लिए आए हैं, तो करना पड़ता है सब काम। जो भी करना पड़ता है वो पूर्व का अपराध की सजा भोगने के लिए करना पड़ता है, इसमें रस काहे का, फिर रस किसका आता है। लेकिन सही विचारणा सुविचारणा अगर हमारे पास नहीं है तो हम हमारे अहित के कार्य में बहुत खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, नाचने लगते हैं, ये बात हो जाती है। नुकसान करते हैं अपने आप को, दुर्गति में हम अपने आप को ले जाते हैं और ऐसे दुर्गति के फल स्वरूप जो भी परिस्थिति होगी इसके कारण में अभी ऐसे परिणाम करते हैं दुर्गति के, तो उसमें बहुत उत्साहित हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, इसी का नाम अज्ञान है। हाँ क्या बोले जहां हम ठहरते हैं वो तो धर्मशाला है, क्योंकि परमानेंट तो कुदरत मां किसी को रहने नहीं देगी, कुछ टाइम के लिए रहना है धर्मशाले में, तो मिल जाते हैं कुछ न कुछ, कोई स्नेह से बात करेंगे, सज्जनता से रहेंगे, लेकिन अपनों अपने आप को संसार में संसार सागर में डुबा दें वो तो बुद्धिमानी नहीं है, उसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, विचारवानपना नहीं है। तो इस तरह से उदासीनता से ये आराधन करना है। हमारे लिए तो जो प्रवृत्ति उदय में है, अभी अपने आप की बात करते हैं, देखिए ये एक बहुत सुंदर चित्र देखने को मिलता है कि ज्ञानी पुरुष कैसे संसार में प्रवृत्ति करते हैं, अपनी बात बताते हैं। कोई अपनी बात बताएगा ज्ञानी तो उतने सरल है कि अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं, खुली कर देते हैं कि जो प्रवृत्ति हमको उदय में है वो ऐसी है कि दूसरे दरवाजे से चला जाए तो भी न छोड़ सके ऐसी है, पिछले दरवाजे से हम भागना चाहे, क्या अगले दरवाजे से तो कोई निकलने ही नहीं देंगे हमको, लेकिन पीछे वाले दरवाजे से भागना चाहे तो भी नहीं भग सके, ऐसी प्रवृत्ति में हम फंस गए हैं। जब उनको ये मालूम हुआ कि हम फंसे हुए हैं तो रस का किसका आएगा, फिर उनको रस आने का सवाल नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति है। वेदने योग्य है, मैंने सहन करने योग्य है, ये सजा का भोगवटा कर लेना पड़ेगा ऐसा दिखता है, इसलिए उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए कार्य में हम शामिल होते हैं। जैसे जेलर काम करवाते हैं, वैसे पूर्व कर्म हमसे काम करवाते हैं। तथापि अव्याबाध स्थिति के बारे में जैसा है वैसा स्वास्थ्य है, हमारी जो अंतर्ज्ञान परिणति है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में पूरी तंदुरुस्ती है, उसमें हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं है। देखो क्या बात खोल दी, फिर भी अव्याबाध स्थिति है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाते। वेदन को कोई छू सकते नहीं, वेदन तक कोई पहुंच सकते नहीं, किसी की पहुंच वहां नहीं है। नहीं, अब इनको तो क्या है कि अपनी परिणति अव्याबाध परिणति चलती है ना, जो बाधा नहीं हो गए उदय के परिणाम और उदय के संयोग, उसमें बाधा नहीं डाल सकते, ऐसी तगड़ी मजबूत परिणति है। उसका स्वास्थ्य तो उतना क्या उतना ही है, वो स्वास्थ्य हमारा बिगड़ा नहीं है अंतर का, ऐसा कहते हैं। आज ये आठवां पोस्ट कार्ड लिखते हैं, क्या सात पूरा हो गया, वो सब आप सब सर्व जिज्ञासु भाइयों को बार बार विचार करने के लिए लिखा गया है, इस बात पर विचार बहुत करना, फिर पड़ जाना ऐसा नहीं, विचार करना। चित कभी ऐसा उदय वाला भी वर्तता है कि लिखी जाता है तो लिख जाता है, नहीं लिख जाता है तो नहीं लिख जाता है। आज ऐसा अनुक्रम उदय होने से उदय के अनुसार लिखा है, उदय भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या प्रति काम करती है। हम भी सत्संग की और निवृत्ति की कामना रखते हैं, तो फिर आप सब लोगों को रखनी चाहिए, इसमें कौन सा आश्चर्य है, कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम भी अल्प आरंभ को, अल्प परिग्रह को, व्यवहार में व्यवसाय में बैठे हैं, फिर भी प्रारब्ध निवृत्ति रूप को चाहते हैं, कि हमारा प्रारब्ध भी ऐसा कब होवे कि हम इस व्यवसाय से निवृत्त हो जावे। देखिए 26 साल की उम्र में महत आरंभ और महत परिग्रह में हम पढ़ते नहीं है, बड़ा जो भी धंधा चलता है इसको बढ़ाने की कोई हमारी वृत्ति नहीं होती कि हमारा धंधा बढ़ जावे बड़ा हो जावे, ऐसा हम नहीं चाहते। तो फिर तुमको ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई संशय करने लायक नहीं है। अभी हमारा समागम होने का, योग का कोई खास समय लिख सके ऐसा सूझता नहीं है कि हम कब आपको मिलेंगे, ऐसा कोई कहने के लिए अभी कोई परिस्थिति नहीं दिखती है, यही विनंती है। ऐसा करके इस पत्र को पूरा किया।